उस वक्त के पोप को एक खत भेजा था कि ये जो जो जंगली लोग हैं, ये जो गैर मुतमद्दिन लोग हैं, ये मेरी सल्तनत को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने अर्ज़ मुकद्दस फ़लस्तीन पर तो पहले ही सदियों से कब्ज़ा किया हुआ है, अब ये हमारी सल्तनत के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं तुमसे फरियाद कर रहा हूँ कि अर्ज़ मुकद्दस को इन वहशियों के चुंगल से आज़ाद करवाओ। उस वक्त जो पोप था वो फ्रांसीसी था, उसका नाम था पोप अर्बन। उसने जब वो खत उसको मौसूल हुआ तो उसने फ्रांस में एक मकाम पर यूरोप के तमाम शहजादों को जमा किया और उनसे कहा कि देखो, मुझे यसू मसीह ने ख्वाब में आके बशारत दी है कि जो भी अर्ज़ मुकद्दस को इन 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 जिंदीकों से, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था ना, वो ये था हीदन, इन जिंदीकियों से रिहा करवाएगा, वो खड़ा जन्नत में जाएगा।
और फिर जोक दर जोक गरीब लोग वहां से निकले थे।
यूरोप के शहजादों ने अफवाज जमा की
और वो गरीब लोगों पे मुश्तमिल थी। उन्होंने अय्याशी को पहली बार देखा था, सोना चांदी जर्क बर्क तो वो इन ममालिक में देखा था।
तो 1099 में 11वीं सदी खत्म होने वाली थी जब उन्होंने बैतुल मकदस पर हम कब्जा किया।
सही।
और बैतुल मकदस पर कब्जा भी किया था, वही जो बात तुम कह रही थी कि मुसलमानों की आपस की तफरकाबाजी से फायदा उठा के। उस वक्त दो खिलाफतें थीं इस्लामी, एक मिस्र में फातिमी खिलाफत थी, दूसरी इराक में बगदाद में अब्बासी खिलाफत।
और अब्बासिद और फातिमिद एक दूसरे के
जानी दुश्मन थे।
और ये तारीख रही हमेशा से,
यही तारीख। तो वो जो मैं कह रहा था ना कि हमारे दुश्मनों को हमारी अपनी तारीख याद रहती है, उनको तारीख याद है। वो जिनको वहशी और दरिंदे समझते थे वही तसव्वुर आज तक उनके जहनों पर है। आज जिस तकरीर का, नेतन्याहू की जिस तकरीर का तुम हवाला दे रही थी, मैंने तो उसे अभी सुबह को लाइव अलजजीरा पे सुना है।
मैंने भी, आप वो अलजजीरा को बंद कराने के चक्कर में आए हैं, वो अलजजीरा को बंद कराने पे आए हैं।
अलजजीरा की वो एक फलस्तीनी लड़की है जो गजा में उनकी नुमाइंदा है, उसके शौहर को कॉल किया है इसराइल की फौज ने और कहा है कि तुम्हारा घर निशाने पर है, अपनी बीवी को।
सर आप निशाने को भी छोड़ दें, उनको तो सबको मरवा देंगे। आज स्पेसएक्स के स्टारलिंक के जनाब एलन मस्क के भी खिलाफ हो गए हैं, बिकॉज उन्होंने स्टारलिंक के जरिए गजा में जब दिया है तो गजा को ये ब्लॉक करना चाहते थे, मगर जो सहाफी हैं उन्होंने फुटेज देना शुरू कर दिया अलजजीरा को। दे वॉन्ट टू स्टॉप अलजजीरा नाउ।
नेतन्याहू ने यही कहा है। वो जो मैं कह रहा था ना कि वो जो 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 पोप ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे वही आज नेतन्याहू ने इस्तेमाल किए हैं कि ये जो हमास के बारबेरियंस हैं, ये दरिंदे हैं और इनके खिलाफ इन्होंने मुतमद्दिन दुनिया सिविलाइज्ड वर्ल्ड के खिलाफ जंग का नारा लगाया है, जंग का नकारे पर चोट दी है। तो अब हमारा ये फर्ज है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड टू एनाहिलेट दीज बारबेरियंस।
जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब से आपने बातचीत सुनूं कि लुब्बे लुबाब ये निकला कि हमारी तारीख ही ये है कि सल्तनत के लिए और बादशाहत के बचाव के लिए वी कैन वर्क फॉर
हम अपने मफाद के लिए, अपने जाती मफाद के लिए कौम और मिल्लत के मफादात को कुर्बान कर देते हैं, ये हमारी तारीख है।
बहुत शुक्रिया करामतुल्लाह गौरी साहब से मुलाकात। हमारा टाइम कम हो गया, मैं माफी की ख्वाहिश करूं, मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं उनको, मगर ये लेक्चर तो नहीं है, ये तो बातचीत है। आई लव यू ऑल, आई होप सो हमारी गलतियों को ताइयों को माफ करेंगे। स्टे ट्यून्ड, गेट रेडी फॉर द न्यूज नाउ।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जस्टिन ट्रूडो आपके आसपास क्रैक हेरोइन और कोकेन को लीगल बना रहे हैं, इसीलिए हर तरफ आप अफरा तफरी और जुर्म को देखते हैं। बस बहुत हुआ, पियर पॉलीएव इन तमाम हार्ड ड्रग्स को बंद करेंगे, आदि अफराद को इलाज फराहम करेंगे और मुजरिमों को जेल भेजेंगे। ये एड आप तक पियर पॉलीएव और कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा ला रहे हैं।
रियल एस्टेट में नए एजेंट्स की कामयाबी की जमानत।
वेलकम टू एग्जीक्यूटिव होम्स रियलिटी, 150 से 2 लाख सालाना कमीशन।
बायर एंड सेलर लीड्स, वीआईपी एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, वन ऑन वन सेल्स, मार्केटिंग एंड मेंटरशिप, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न ऑफिस, प्राइवेट रूम्स,
इन हाउस मॉर्गेज लॉयर्स टीम,
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो फिर देर कैसी, आइए ज्वाइन कीजिए
एग्जीक्यूटिव होम्स रियलिटी,
905-890-1300। विजिट कीजिए ehrb.ca।
खूबसूरती वधाउण लई, उमर छपाउण लई देसी कनेडियन नैचुरल हेयर कलर शैम्पू, वाल काले जां डार्क ब्राउन करन दे लई 7 मिंट लगा के इंतजार करो, तुहाडे वाल लिशका मारनगे। कलर 20 तों 25 दिनां तक खराब नहीं होएगा ते ना ही दीवारां ते बाथटब खराब करेगा। अपने नेडली ब्रांच तों कलर अते कनेडियन लोकल फार्म तों तैयार कीता हनी खरीदण लई वैबसाइट desicanadian.com ते जाओ, जां रामा गिल नूं फोन करो 519-569-9282।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक्ट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773, ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਾਈਲਡ ਰਾਈਡਸ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.99 APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤਮਾਮ ਹੀ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਜਾਂ forddealers.ca ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ।
ਇਸ ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਮਤ 487,990 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਡੀਅਮ ਥਾਨੀ, ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਆਵਾਜਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲਟਨ ਫਿਊਚਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੱਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। GTA ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ stationside.ca।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ, 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com, QTL, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
जी साहब नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड इससे पहले कि हम हॉट 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 न्यूज आपके पास लेके आए, चलिए साहब आपका दिल पहले हम क्या करेंगे, गार्डन गार्डन लीजिए साहब, दूर से आवाज आई है मुझे गार्डन गार्डन। तो इस गार्डन गार्डन के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं तुम क्या मिले, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अरिजीत की आवाज, श्री गुट की आवाज, समाप्त।
बेरंगे थे बेरंगी शामें, आई है तुमसे रंगीयां,
बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हाँ मुश्किलें तुम क्या मिले तुम क्या मिले हम ना रहे हम तुम क्या मिले जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले
मॉर्गेज नहीं मिल रही झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस रिन्यूअल ऑप्शंस मॉर्गेज डिफिकल्टीज डाउन पेमेंट इश्यूज सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फंड्स सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659 लाइसेंस नंबर 10530
जस्टिन ट्रूडो आपके आसपास क्रैक हेरोइन और कोकेन को लीगल बना रहे हैं इसीलिए हर तरफ आप अफरा तफरी और जुर्म को देखते हैं बस बहुत हुआ पियर पॉलीएव इन तमाम हार्ड ड्रग्स को बंद करेंगे आदि अफराद को इलाज फराहम करेंगे और मुजरिमों को जेल भेजेंगे ये एड आप तक पियर पॉलीएव और कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा ला रहे हैं
वेलकम टू इकराज हलाल फाइनेंसिंग के लिए आपका घर पिछले 3 साल की मेहनत कोई शॉर्टकट नहीं कोई समझौता नहीं और कोई राज नहीं पेश करते हैं 5 साल की रिन्यूअल मॉर्गेज जबरदस्त खसूसियात और मुनासिब रेट आलमी सतह पर तालीम शुदा पेशा वाराना अफराद के साथ एक मजबूत टीम शरीयत की तामील की जमानत बगैर इंतजार के 5 दिन में एप्लीकेशन अप्रूव सारे प्रोविंसेस के लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं सिवाय क्यूबिक के आज ही अप्लाई करें इकराज.com EQRAZ.com
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेज की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA तो इंतजार कैसा अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666 ٹیلی ٹائم الیکٹرونکس
भाई सस्ता ला ला इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला ओहो सल्ला भैन जी कनाडा आ गए तुसी इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी फ्रूट्स दाला सब्जियां सब कुछ बहुत कट कीमत विच मिलदा
ए आ जी एशियन फूड सेंटर इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज फलो फ्रूट दाला सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे प्लेटां बाटियां सब कुछ मिलदा है साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ
जल्दी आ जाओ जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
बड़े अंडर प्रेशर खेल रहा हूं मैं, बहुत अंडर प्रेशर, चारों तरफ से प्रेशर है जी, मगर फिर भी हम पाकिस्तानी डटे हुए हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट। सब क्या किया जाए, मेरा ख्याल है कि अब न्यूज की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत कहती है, बड़ी मेहनत से मैंने ये सारी न्यूजें निकाली हैं, अंदरों से निकाली है, पता नहीं क्या न्यूजें निकाली हैं, देखें, कहती है बड़ी हॉट है, शाजिया मलिक जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं
आप? सलाम, यानी आप ये जो कह रहे हैं ये हॉट हॉट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप कहना चाह रहे हैं मुझे कि मैं आपको बोलूं यू आर लुकिंग वेरी हॉट?
नो,
चलो मजद भाई मैं बोल देती हूं,
ऑपोजिट ऑपोजिट, आई एम टेलिंग यू दैट यू आर लुकिंग हॉट।
अच्छा अच्छा अच्छा,
चलो आप देख के गर्मी आ गई है।
अच्छा ठीक है ठीक है, मजे से जिस दिन से आपकी एनके शनके गई है ना,
हाँ जी, हाँ जी,
आप जरा कुछ ज्यादा मस्ती में हैं,
है ना,
ये चक्कर क्या है? उन्होंने अंदर का
हाँ। वो सारा जादू मेरी
नई आंखों का है,
नहीं चश्मे पे था वो।
अच्छा अच्छा,
मैं निकाल के फेंका चश्मा, एंड एवरीथिंग इज आई एम अ डिफरेंट मैन,
डिफरेंट मैन, ओह माय गॉड, मार्लन ब्रांडो बन गए अब आप हैं।
मार्लन ब्रांडो मरू?
नहीं नहीं, उनकी तरह की कलरफुल पर्सनालिटी वैसे हो गए हैं आप हैं,
अच्छी बात,
तो ऐसा चक्कर है। अच्छा जी, अच्छा जनाब माजिद भाई जो है ना, वो आपको पता है मुझे हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, काम करने देते नहीं है, खुद भी सारा दिन आमिर के साथ मस्करियां करते हैं और उनको लग रहा है दूसरे भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो देखो जी हम तो काम वाले बंदे हैं, हम तो वो आपने सुना है ना, नौकर की थे नगरा की,
मैंने आज ना मुझे कुछ वो कर दिया,
डिस्ट्रैक्ट
डॉज दे दिया मुझे।
अच्छा,
अब देखें वो कर रहा है काम अपना।
अच्छा अच्छा,
पहले किस पता नहीं कौन सा
म्यूजिक लगाया नहीं था,
किसी फिल्म का म्यूजिक लगाया हुआ था उसने, है ना, तो आज है, अब
वही है ना, वो बाप दोनों सोते रहते हैं तो अब क्या किया जाए,
हम लोग तो आए हैं सोने के लिए,
सोने के लिए,
सोना चाहे गोल्ड कह लो या सोना स्लीप कह लो, हम तो सोने से प्रॉब्लम,
सोने से प्रॉब्लम, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है,
दो सेकंड के लिए
हाँ मजूजुक बजा लेते हैं,
मजूजुक बजा लो, जी साहब अब वापस आ गए हम, एंड अब हम लिए चलेंगे आपको न्यूज की जानिब, एंड शाजिया मलिक जी।
हाँ जी, तो दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय इकरास, आपको पता है ये श्रीया कंप्लायंट सर्विसेज देते हैं, तो अगर आपको और उनके बारे में जानना है तो ikraas.com पे जाएं और उनकी सर्विसेज देखें, और रिबा अगर आपको वाली सर्विसेज नहीं चाहिए, ये चाहिए श्रीया कंप्लायंट, तो आप जाएं। इसके अलावा जनाब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आरिफा मुजफ्फर जी, आपको पता ही है वो हमेशा कहती हैं अगर आपने रिलायबल तरीके से घर बेचना या खरीदना है तो आरिफा मुजफ्फर जी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको आप कॉल भी कर सकते हैं, तो जो है वो आपको सारी सर्विसेज देंगे।
आरिफा मुजफ्फर जी को पता है कि इतना हॉट प्रोग्राम है,
प्रोग्राम है,
तो मेरा नाम भी बीच में डाला जाए ना,
जी, जी,
मेरा
जी,
भी एडवर्टाइज किया जाए, एंड शी पेड हाई हाई मनी,
हाँ बहुत पैसे, मैंने उनको कहा है जीशान को कहा, अच्छी बड़ी मोटी वाली इन्वॉइस बना के भेजे,
ये जो हमारा न्यूज का सेगमेंट है ना, इसमें जी हम तो ट्रिपल चार्ज करते हैं,
बिल्कुल
बहुत चार्ज करते हैं, तो वो आरिफा जी ने कहा जितना भी चार्ज करना है प्लीज 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 घर खरीदना हो
हाँ,
तो आरिफा मुजफ्फर,
आरिफा मुजफ्फर जी को, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उनको करें। अच्छा जनाब, आज जो सबसे बड़ी तो पहली न्यूज है यानी ग्लोबल अफेयर्स, कनाडा के पास पैसे तो कनाडा के पास बहुत हैं, यूक्रेन को इधर उधर देने के लिए हाँ, पर अपने बंदों को वॉर जोन से निकालने के लिए पैसे नहीं है, है जी, तो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने आज कहा है कि जो हमारे लोग फंसे हुए हैं लेबनान में, अभी भी हमारी जो हसीना है मेलानी जोली
जी,
जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा अभी भी कमर्शियल फ्लाइट्स चल रही हैं, गवर्नमेंट के आसरे पे ना रह जाना कि गवर्नमेंट कोई स्पेशल फ्लाइट्स चलाएगा, निकल जाओ फॉरेन, लेबनान से निकले आप फॉरेन निकले, हाँ जी बिल्कुल साफ साफ
बात कह दी,
अपने पैहों पे, अपने पैहों के, कनाडा में के जो अम्बेसडर हैं लेबनान में स्टेफनी मैकलम, उन्होंने भी कहा है कि भाई इस वक्त जो है अम्बेसी के अंदर रजिस्टर किया है 17,290 लोग जिनके बारे में हमें पता है कि वो रजिस्टर्ड इन लेबनान, 452 इन वेस्ट बैंक एंड गाजा, 5,663 इन इसराइल, तो हम इवैक्यूएशन प्लान्स बना रहे हैं वेस्ट बैंक गाजा और इसराइल से तो निकालने के लिए, लेकिन लेबनान के लिए हमारे वैसे तो प्लान्स इन प्लेस हैं, लेकिन हम भी आपको अर्ज करते हैं कि इमीडिएटली अभी आपके पास टाइम है लेबनान से आप निकल जाएं, लेकिन इससे पहले आपको पता है कि 2006 में भी, जुलाई 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल की जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त भी कनेडियन गवर्नमेंट ने 14,370 लोग जो हैं उनको इवैक्यूएशन फ्लाइट्स में वो वापस लेकर आए थे, लेकिन इसके ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसका 94 मिलियन डॉलर्स जो था वो लग गया था। इसीलिए आप जो है गवर्नमेंट कह रही है कि भाई फौरन वहां से निकलें और आप अभी जो है फ्लाइट्स वहां से चल रही हैं तो इट इज अ गुड टाइम फॉर यू टू लीव इमीडिएटली, क्योंकि आपको पता ही है कि इसराइल ने लड़ाई जो है अब वो लेबनान के बॉर्डर्स तक ले आई है और हो सकता है कि ये अब आगे भी जाए। एनडीपी जो है जी उसने आज फिर से फोर्ड गवर्नमेंट के ऊपर बेतहाशा एतराज किए हैं। उन्होंने कहा जी कि 18 मिनिस्टर जोनिंग ऑर्डर्स जो थे फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो उन गेस्ट को दिए गए थे जो के प्रीमियर फोर्ड की बेटी की शादी के ऊपर लास्ट समर में आए थे। ये एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने। उन्होंने कहा जी लैंड प्लानिंग टूल जो है वो फास्ट ट्रैक कर रहा था डेवलपमेंट इन दैट एरिया और पीसी गवर्नमेंट जो है उसको हमने पहले भी क्रिटिसाइज किया था कि ये जो मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं मिनिस्टर जोनिंग ऑर्डर्स MZO ये ठीक नहीं है। एनडीपी की लीडर मैरी स्टाइल्स ने आज कहा कि जितने भी फोर्ट्स आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने इसमें बड़े फायदे उठाए हैं। 9 of 18 MZOs वर गिवन टू फ्लैटो डेवलपमेंट जिनके के ओनर शाकिर रहमतुल्ला हैं। इसके ऊपर जो थी ये इतनी ज्यादा चीजें हीटअप कर गई थी, ये जो ग्रीन बेल्ट की जमीन को लेकर वो कह रहे थे के गवर्नमेंट के हम इस पे घर बनाएंगे कि जो मिनिस्टर हैं कलीद रशीद उनको भी रिजाइन करना पड़ा था। फोर्ड साहब के जो फॉर्मर हाउसिंग पॉलिसी डायरेक्टर थे उन्होंने जब ये रेवलेशंस उनकी आई थी कि लास वेगस में उनकी मुलाकातें रहमतुल्ला साहब से हुई थी तो उसके बाद जो है काफी सारे लोगों को जैसे कि फॉर्मर हाउसिंग मिनिस्टर जो थे उनको भी और स्टीव क्लार्क को और उनका जो उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ उन सबको रिजाइन करना पड़ा था। इस वक्त करंटली जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं पॉल क्लैंट्रा साहब उन्होंने कहा जी कि हमने एक रिव्यू बिठाया हुआ है लेकिन फिर भी ये जो मिनिस्टेरियल जोनिंग जो एरिया है जो ऑर्डर्स दिए गए हैं MZO के अंडर वहां पे हम घर बनाएंगे और तेजी से बनाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जी ये अब पीछा नहीं छोड़ रहा ये जो स्कैंडल है फोर्ड साहब की गवर्नमेंट का। ओलिविया चाओ साहिबा जो टोरंटो की मेयर हैं और ओंटेरियो के प्रीमियर फोर्ड साहब जो हैं उनके बीच में सेकंड मुलाकात हो सकती है। इनके बीच में पहली मुलाकात जो थी सितंबर के महीने में हुई थी जिसमें कि इन्होंने फिर वही रोना रोया था कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, है जी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दो मुझे।
वो कह रहे हैं शादी जी दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज हमारी गवर्नमेंट जो है स्पेशली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है
जी,
इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है एक्सिस में है
लेकिन जो इनकी मुलाकातें पहले भी हुई थी और अब भी हुई हैं इन दोनों ने ये आज अपना जो लेटर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को उसमें उन्होंने कहा जी कि ट्रोनो इज फेसिंग 1.5 बिलियन डेफिसिट तो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे।
सही
फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे
मगर उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट भी देगी।
जी जी हम होप करते हैं कि अल्लाह करे जरूर दे। तो वो कहते हैं जी कि जब ये इनकी सितंबर में मीटिंग्स दोनों की हुई थी तो उस वक्त एक वो वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिसने के कहा था कि जो ट्रोनो के पास पैसे बहुत कम है और इनके रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शन जो है वो भी कम है तो या तो ये किया जाए कि ये जो म्यूनिसिपल लैंड ट्रांसफर टैक्स है ऑन लग्जरी होम्स जिनकी की कीमत 3 मिलियन या अबव है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए या कि फिर जो सेकेंड होम टैक्सेस हैं वो बढ़ाया जाए, बस एक ही इनको काम आता है टैक्स बढ़ाओ टैक्स बढ़ाओ। तो बहरहाल जी अब ये इनकी दूसरी मुलाकात होने जा रही है और उसमें अब फिर से बहरहाल जो लेटर एक लिखा गया उसमें कहा जी कि हमारे बड़े फाइनेंशियल वोज हैं तो प्लीज उनकी जवाब देखें और उसको जो है यानी कि वो ट्रेडिशन जो है जॉन टोरी साहब की वो चलती जा रही है पैसे मांगने की है जी वो
पैसे नहीं है
पैसे नहीं है पैसे नहीं
है गलत डिसीजन लिया था
असली भी बड़े अरसे रो रहे हैं मजद भाई मिलियन डॉलर नहीं है सानू तो कोई नहीं दे रहा
मगर हमने उनको दिया था पहले पैसा जो गलत लेन लगा दी वहां
हाँ बिल्कुल वो बना दी साइकिलिंग लेन बना दी फिर कहा ये ठीक नहीं बनी इनको तोड़ो उखाड़ो फेंको
अब पैसा नहीं है
हाँ पैसे नहीं है हमारे पास हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे है। अच्छा जनाब ऑन्टेरियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ जो है डॉक्टर कायरोन मोर उन्होंने फिर से कहा है कि भाई टीके लगवाओ ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बिजनेस चले।
उन्होंने स्पेशली आप पूरा डिटेल से पढ़ें उसमें आपका नाम क्यों दिया बता नहीं मुझे
हाँ मेरा नाम भी दिया
आपका नाम बकायदा हाँ, नाम के साथ शाजिया मलिक जी
हाँ टीका हाँ, लगवाओ आप सबसे पहले तो आप फ्लू शॉट लगवाओ और फिर एक और पांचवा टीका लगवाओ
दो टीके दो टीके कह रहे हैं दोनों एक साथ लगा
दोनों एक साथ लगा लो हाँ जी। तो वो कह रहे हैं जी कि इस दफा वैसे इस साल हॉस्पिटल्स के अंदर और ऑन्टेरियो में ज्यादा तो केसेस अभी तक नहीं आए रेस्पिरेटरी वायरस के बस इन्होंने अब कह दिया आने शुरू हो जाएंगे तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि फॉल और विंटर के लिए जो है वो आज से जैसे कि खोल दिए गए हैं फॉर पीपल 6 ईयर्स एंड अबव तो वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो फ्री शॉट्स दिए जा रहे हैं आप लोग हॉस्पिटल्स में जाएं या अपने क्लिनिक्स पे या के जो फार्मेसीज हैं डेडिकेटेड उनके अंदर जाएं और फ्लू शॉट्स भी लगवाएं और कोविड 19 की वैक्सीन भी लगवाएं क्योंकि अब नया जो वायरस है वो सामने आ रहा है यानी कि जी बस टीके लगवाते जाओ.
कितने लोग लगवाएंगे? I'm not too sure about it.
Yes, yes, बिल्कुल ठीक है जी. बस वो मेहदी हसन का गाना था ना, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले. ये फार्मास्यूटिकल्स भी यही कह रही है, शॉर्ट्स लगवाने चले भी आओ के हमारा कारोबार चले. हैं जी,
उनका क्या है, वो तो
बिलियंस ऑफ डॉलर्स
कमा बेच देते हैं एक बात में.
बिल्कुल जी. इक्विफैक्स कनाडा जो है जी, उसने आज एक सर्वे वो लेकर सामने आए हैं और उसके अंदर उन्होंने सर्वे किया है 18 इयर्स और 34 इयर्स की एज के लोगों का. और उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि जो बेचारे यंग एडल्ट्स हैं कनाडा के अंदर, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पिंच जो है वो फेस कर रहे हैं.
बैड न्यूज.
जी जी बिल्कुल. तो वो कह रहे हैं जी कि 36% जो है वो तो अपने बिल्स भी पे नहीं कर सकेंगे कंपेयर टू 23% ओवरऑल, यानी कि जो कंट्री में ओवरऑल लोग जो है वो वैसे नहीं कर सकेंगे. लेकिन ये जो एज ब्रैकेट है इसमें ये जो परसेंटेज है ये 36 है. इन्होंने 52% जो सर्वे किया था इन लोगों का, उन्होंने कहा था कि जी हमारा पर्सनल डेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू 39% ओवरऑल जो मुल्क का डेट है उससे कंपेयर. इसके अलावा उन्होंने कहा जी क्रेडिट कार्ड का जो है बिल्स वो भी सेकेंड क्वार्टर में बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे और 3 in 10 जो हैं वो उनके, वो कहते हैं जी कि हमारे लिए मुश्किल हो गया अपनी मॉर्गेज को कवर करने के लिए या रेंट पेमेंट्स देने के लिए. तो इनकी कंडीशन जो है बेतहाशा पतली होती जा रही है. और वो कह रहे हैं जी कि जितने भी जो यंग एडल्ट्स हैं या कैनेडियन एडल्ट्स हैं मोस्टली उसमें से जो हैं सेकेंड टू थर्ड जॉब्स तक वो ढूंढ रहे हैं ताकि अपने फाइनेंशियल बर्डन जो है उसको ऑफसेट कर सकें. तो
दैट रियली इज अ, जो एज ग्रुप दिया है ना
जी,
दैट इज अ वेरी डिसहार्टनिंग
वेरी. वो तो बच्चे छोड़ देंगे पढ़ाई वढ़ाई, बस जॉब जॉब करना शुरू कर देंगे. ऐसी है हफिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक रिपोर्ट है और इसमें जो कमला हैरिस साहिबा हैं वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की, उससे लोगों ने पूछा आज कि भाई आप लोग जो हैं गाजा के अंदर या इसराइल के अंदर अपने यूएस फोर्सेस भेजेंगे? तो उन्होंने कहा जी ना तो हमारा इंटेंशन है ना तो हमारा प्लान है कि हम वहां पे फोर्सेस अपनी ट्रूप्स जो हैं वो भेजेंगे. अच्छा, अब ये कमेंट्स इन्होंने क्यों दिए और इनसे ये क्वेश्चन क्यों किया गया जब इन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं हम तो चाहते हैं कि हर कोई पीस में रहे, पैलेस्टीनियंस जो हैं उनका भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है और डिग्निटीज ही रहे और उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी हम देंगे. ये क्वेश्चन इसलिए इनसे पूछा गया क्योंकि यूएस जो है उसने सीरिया के ऊपर बहुत सारे अभी अटैक्स किए हैं क्योंकि उसने कहा जी कि हमारे ऊपर भी जो यूएस की भी जो फैसिलिटीज थी वहां पे उसके ऊपर एक सीरीज ऑफ अटैक किया गया था, ना सिर्फ सीरिया में बल्कि इराक में. यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने इन स्ट्राइक्स के बारे में कहा था कि दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इसराइल हमास वॉर, जो हमने रिटेलिएशन किया है. इससे पहले बाइडन साहब ने भी रिपोर्टर्स को कहा था कि हमने ये जो रिटेलिएशन की है इराक और सीरिया के अंदर, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद हमास वॉर और हम अपने जो लोग हैं जो यहां पे स्टेशन है मिडल ईस्ट में उनको बचाने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं. लेकिन कुछ तो यहां पे फिशी चल रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि स्टेट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने हफिंगटन पोस्ट से बहुत ही ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमिटी बात करते हुए कहा है कि म्यूटनी जो है वो ब्रू कर रही है स्टेट के कुछ लेवल्स के अंदर क्योंकि लोग ज्यादा ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं इसराइल के साथ वो उसके ऊपर ज्यादा खुश नहीं है. और लास्ट वीक हमने आपको यह खबर बताई थी कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जॉश पॉल ने रिजाइन किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाइडन साहब की जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है इसराइल के लिए और जो पैलेस्टीनियंस को वो मरने दे रहे हैं उसके पीछे मैं जो है रिजाइन कर रहा हूं, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है. रशियन पुलिस जो है जी उसने तकरीबन 60 लोगों को पकड़ा है फॉर एंटी सेमेटिक कॉमेंट्स क्योंकि आपको पता ही है कि यहां पर जो इनका इलाका है देगिस्तान रशिया के साउथ में, यहां पे बहुत सारे लोग प्लेन्स के गिर्द जमा हो गए थे और एयरपोर्ट के अंदर टैमरिक पे आ गए थे क्योंकि उनको लग रहा था जैसे कि बहुत सारे रेफ्यूजीज को वहां से इसराइल से लेके आया जा रहा है. तो ये आपको पता ही है कि देगिस्तान का एरिया जो है मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेटेड है तो उनको लग रहा था कि कोई बहुत सारे इसराइली यहां पर आए हैं तो उसके लिए इन्होंने यहां पर जो है मोर्चा निकाला, यहां पर स्लोगन्स रेज किए इसराइल के अगेंस्ट, फ्लैग्स भी ये कैरी कर रहे थे. उसके बाद फिर ये इनके जो है कुछ पुलिस के साथ लड़ाई शुरू हो गई. उसके अंदर जो रशिया के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि 20 लोग इंजर्ड हुए इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स एंड सिविलियन. सर्जे मेलिकॉव जो कि देगिस्तान के गवर्नर हैं उन्होंने कहा जी कि ये हमारे जो एनिमी हैं ये सारी वायलेंस जो है यहां पे क्रिएट कर रही है और ये वायलेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज पुतिन साहब ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ टॉप ऑफिशियल्स जो है वो बुलाई है और उन्होंने भी कहा है कि वेस्टर्न जो ताकतें हैं वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट का मुद्दा बना के हमारी जो रशियन सोसाइटी है उसके अंदर स्प्लिट पैदा किया जाए, और हमको बहुत पता है इन इल विशर्स का। ये बार बार जिस तरह की तस्वीरें हाईलाइट कर रहे हैं वॉर की जो इसराइल और गाजा के अंदर हो रही है हमास के बीच में, तो उससे वो लोगों के अंदर एंगर करना चाहते हैं पैदा और प्रोवोक करना चाहते हैं और इस तरह से लड़ाई झगड़ा जो है वो पैदा करना चाहते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो है मोर्चे निकले हुए हैं बांग्लादेश के कैपिटल ढाका के अंदर भी, और इसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर जो है उसकी डेथ हुई है और 100 जो है जख्मी हैं, कुछ उसमें से बहुत ज्यादा जख्मी हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं वो बिल्कुल रिजाइन करें क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस उनके अंडर नहीं हो सकते, केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर होंगे। यहां पर बांग्लादेश में इलेक्शंस आपको पता ही है कि जनवरी में नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, और जो ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो कह रही है कि जी जब से ये 2019 से 15 ईयर रूल है इनका शेख हसीना का, जब से ये आया है अवामी लीग का पार्टी का, उस वक्त से यहां पे रिगिंग भी चल रही है और यहां पे जितनी भी डायसेंटिंग वॉइसेज हैं उनको भी सप्रेस किया जा रहा है, फ्री स्पीच नहीं चलाई जा रही, और जो जेल्ड हैं क्रिटिक्स उनको जेल किया गया है क्रिटिक्स को, तो इनको हटने की अब जरूरत है। तो यहां पर जो वीकेंड से लड़ाई शुरू हुई है उसमें बहुत सारी गाड़ियां इंक्लूडिंग पुलिस वैन्स एंड एम्बुलेंसेस उनको आग लगाई गई है, बहुत सारे ऑपोजिशन के एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है, 9 जर्नलिस्ट जो ये सारे दंगे कवर कर रहे थे वो उनको अटैक और इंजर किया गया है, और यहां पे जो मोर्चा निकाला था तकरीबन 1 मिलियन जो ऑपोजिशन के एक्टिविस्ट से उन्होंने निकाला हुआ था, तो उसमें जो है काफी यहां पे लड़ाई झगड़े जो हैं हुए हैं। चाइनीज काउंसिल जनरल इन लाहौर जो हैं ज़ाओ शिरन, उन्होंने कहा है जी कि ये जो थर्ड रोड एंड बेल्ट का फोरम है इसके अंडर पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये जो अभी रिसेंटली हो रहा था चाइना में, तो उसमें वो कह रहे हैं जी कि बहुत सारे यहां पे हाई क्वालिटी कोऑपरेशन जो है इनके बीच में आए हैं, और वो कहते हैं जी कि इसमें सबसे बड़ी तो बात यह है कि फास्ट ट्रैक किया गया है द डेवलपमेंट ऑफ गवादर पोर्ट और ML1 उसको किया गया है, इसके अलावा 20 और अग्रीमेंट्स और MOUs किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग इंडस्ट्री ग्रीन लो कार्बन डेवलपमेंट हेल्थ स्पेस कोऑपरेशन डिजिटल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू चाइना, इसमें 458 जो हैं वो तो कंप्लीट तकरीबन होने वाले हैं, 100,000 के करीब इसमें जो है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे जो पार्टनर कंट्रीज जो कि पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड फोरम हैं इनिशिएटिव हैं, और वो कहते हैं जी कि इसमें और भी ज्यादा जॉब्स और बाकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं लोगों के लिए निकलेंगी। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू इकराज आपको पता ही है कि शरिया कंप्लायंस सर्विसेज देते हैं, अगर आपको इनकी सर्विसेज और देखनी है तो आप ikraz.com पे जाएं और उनकी सर्विसेज देखें, और ओंटेरियो का जो लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे है हलाल बफे ये विलेज टेस्ट वाले देते हैं, और अपनी नई लोकेशन पे 2294 लेक शोर रोड वेस्ट पे आए हैं, और इंफॉर्मेशन के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 9052262294, और इसके अलावा नान कबोब इनकी नई लोकेशन आ गई है, आप वहां पर बैठ के भी खा सकते हैं और आप इनको ऑर्डर भी दे सकते हैं, 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 के ऊपर है MSS सागा में, इनको आप कॉल भी कर सकते हैं 4162858191 पे, तो आप इनको कॉल कर लें और आप को जो भी ऑर्डर देना है हेल्दी फूड आप कर सकते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान ने भी बहुत वेहमेंटली जो है वो पैलेस्टाइन के मुद्दे के ऊपर बात की है, और यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अक्रम साहब, उन्होंने बड़ी ही पावरफुल स्पीच दी, और उन्होंने कहा जी कि आप लोग कह रहे हैं कि हमको गलती देखनी चाहिए, तो गलती हमको बिल्कुल नजर आ रही है कि कौन कर रहा है, आपको ओरिजिन्स देखने चाहिए, इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है दैट इज द ओरिजिनल सिन, और पैलेस्टीनियंस जो हैं उनके भी सेम राइट्स होने चाहिए जो कि इजरायलीज हैं, आप सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं इसराइल को राइट ऑफ डिफेंस, इसराइल को राइट ऑफ डिफेंस होना चाहिए, क्या पैलेस्टीनियंस ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन आपकी चूंकि दोस्तियां इसराइल के साथ किथ एंड किन के साथ हैं तो इसलिए आप उनकी साइड जो है वो हाईलाइट कर रही हैं, क्या बात है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं आर दे पीपल ऑफ लेसर गॉड, ये एक छोटा सा हम आपको क्लिप सुनाते हैं जो कि मुनीर अकरम साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये जो की स्पीच दी है क्योंकि यहां पे अडॉप्ट की थी जॉर्डेनियन रेजोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन गाजा, उसके ऊपर उन्होंने स्पीच करते हुए जो बात की आप प्लीज उसको सुने जरा।
इफ यू आर फेयर, इफ यू आर इक्विटेबल, इफ यू आर जस्ट, यू विल नॉट ब्लेम वन साइड एंड नॉट द अदर, एंड इफ यू वर टू गो बैक टू द इश्यू ऑफ हु स्टार्टेड दिस, we all know who started this. It is a 50 years of Israeli occupation and the murder and killing of Palestinians with impunity that started this. When you push a people into the corner, they will respond. This is what the Secretary General said. It did not happen in a vacuum. And look at the reaction that came from the Israeli representative, insulting the Secretary General, calling for his resignation. They can't face the truth. They can't face justice. They can't face the fact that the
justice nahi face kar sakte, and that is a complete crime. तो ये क्राइम जो है ये आपको रोकना पड़ेगा. तो बड़ी जबरदस्त इनकी स्पीच थी. अगर आप ज्यादा भी सुनना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस का जो टीवी है उसके ऊपर ये पूरी आप स्पीच जो है सुन सकते हैं. पाकिस्तान के अंदर पंजाब के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जी, उसने एक लंबा चौड़ा जो है सिर्फ टोटल चार महीने के लिए बजट जो है अपना स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2023 टू फरवरी 2024 इसको जो है वो अप्रूव किया है. केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है लाहौर में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हमने ये बजट 2.08 ट्रिलियन रुपीज का पेश जो किया है इसको कैबिनेट की ग्रीन लाइट मिल गई है. सिर्फ दो महीने रह गए हैं इलेक्शंस में और इन्होंने ये इतना बड़ा जो है वो बिल लेकर अब फिर से एक और सामने आ गए. बिल का मतलब है कि इतनी बड़ी जो स्पेंडिंग अब ये करेंगे. इसमें इन्होंने कहा जी कि इसमें से 351 बिलियन जो है डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए जाएंगे. 51 बिलियन जो है वो उसमें रिलीफ दी जाएगी प्रोविंस के लोगों को. 1.72 ट्रिलियन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. 355 बिलियन ongoing developmental schemes के ऊपर spend किया जाएगा. 170 billion for salaries, 130 billion for pensions, 2 billion for IT, 10 billion for repair of roads and buildings, 208 billion for health, 222 billion for education, 7.3 billion for climate change and 10 billion for agriculture. तो ये जनाब इन्होंने सारा आज जो है और गवर्नमेंट पे अब ये माशाल्लाह से बोझ डाल के जाएंगे और उसके बाद फिर जो है कहेंगे जी कि हमने तो बड़े अच्छे काम किए थे. आज पाकिस्तान ने जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर जो ह्यूमन राइट्स है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने ये जो कह दिया है अफगान रिफ्यूजीज को निकलने के लिए उसके ऊपर जो है वो बड़ा रिएक्शन शो किया है फॉरन ऑफिस ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहा, उनको फोर्स नहीं कर सकता. फॉरन ऑफिस के की स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि इलीगल फॉरनर्स रिपैट्रिएशन प्लान जो है वो तमाम इलीगल फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में रह रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी एंड कंट्री ऑफ ऑरिजिन उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है और ये डिसीजन पाकिस्तान ने अंडर पाकिस्तान सॉवरेन डोमेस्टिक लॉज जो है वो लिया है, जिसमें कि हमारे ऊपर लाजिम है कि हम पाकिस्तानी शहरियों की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के ऊपर काम करें, खासतौर पे वो जो कि बहुत ही वल्नरेबल हैं, क्योंकि ये बहुत ही अब सीरियस होता जा रहा है. पाकिस्तान का रिकॉर्ड आपके सामने है, पिछले 40 इयर्स में हमने मिलियंस ऑफ अफगान्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं उनको होस्ट किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अब जो है अपनी एफर्ट्स और बढ़ाने की जरूरत है. लेकिन ये जो रिफ्यूजीज हैं जो इलीगली रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पता चला था कि बहुत सारे जो जुर्म हो रहे हैं उसके अंदर अफगान नेशनल्स जो हैं शामिल हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए ये फिर कहा था केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर ने सरफराज बुख्ती ने कि लोगों को हम नवंबर 1 की डेट दे रहे हैं और उसके उस वक्त तक तमाम के तमाम इलीगल लोग जो हैं वॉलंटरली वापस चले जाएं. और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आज कहा है कि ये जो रिटर्न ऑफ एलियंस है ये अब शुरू हो गया है और 15,000 से 20,000 जो हैं ऑलरेडी पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं. ये जनाब इंडिया के अंदर जो है कुछ मामलात जो सामने आए हैं वो सोनिया गांधी जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द हिंदू में, उस सिलसिले में सामने आए हैं. हुआ ये है कि मोदी जी ने जो है वो तो जाहिर है कि इसराइल चूंकि बड़ा ही ट्रेडिशनल दोस्त है इंडिया का, तो उसको उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल यू हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसके के ऊपर बहुत सारा एक ह्यूज सेक्शन जो था हिंदुस्तान के अंदर वो भड़क गया, क्योंकि इंडिया ने हमेशा से जो है पैलेस्टीनियंस का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और उनका जो है कि दे शुड एग्जिस्ट विद इसराइल उसके ऊपर बड़ा हाईलाइट काम किया. आज इनका जो आर्टिकल सोनिया गांधी जी का आया है उसमें एक तरफ तो उन्होंने वैसे हमास को कंडेम किया है, लेकिन ये जो दूसरी तरफ इसराइल बेतहाशा ये जो इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर गाजा में एयर स्ट्राइक्स कर रहा है उसको भी बहुत ज्यादा डिनाउंस किया है. पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिक अर्जुन खड़गे ने जो है वो भी बिल्कुल सोनिया गांधी जी की लाइन जो है वो अपनाई. सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल में लिखते हुए कहा था कि कांग्रेस का यह लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल्ड स्टैंस है और हमें बड़ी हैरत है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों एब्सटेन किया उस वोटिंग से ऑन रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जॉर्डन एंड यूएनजीए, जिसमें कि सीज फायर के लिए कहा गया था इंडिया को उसमें हिस्सा लेना चाहिए था. उन्होंने कहा जी कि पैलेस्टाइन की का जो मसला है वो उसी वक्त हल हो सकता है जब एक सॉवरन इंडिपेंडेंट वायबल सिक्योर स्टेट जो है जो कि को एग्जिस्ट करेगी पीसफुल इसराइल के साथ उसके ऊपर काम किया जाए. और जो मोदी जी की तो इनिशियल जो स्टेटमेंट आई थी उसमें तो ये सेटलमेंट का कोई सिलसिला ही नहीं था, उसमें पैलेस्टाइन को तो मेंशन ही किया गया था. इससे पहले असल में प्रॉब्लम यह हुई कि जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज फॉर कम्युनिकेशन जयराम रमेश हैं, उन्होंने ये जो इजरायली सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ था हमास का, उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया, जिसके के ऊपर फिर पार्टी के अंदर कुछ लोग जो थे उन्होंने बड़ा उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो खर्जे साहब ने कहा कि ये जो ब्रूटल अटैक्स ऑफ इसराइल ऑन पैलेस्टाइन है इनको भी खत्म करने की जरूरत है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके के ऊपर फिर सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि जो हॉरर्स हमास का एक्शन लेकर आया था वही हॉरर्स जो हैं आप पैलेस्टीनियन सिविलियंस के लिए और ऑर्डिनरी लोगों के साथ जो है वो करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इंडिया का ये हमेशा से लॉन्ग एंड प्रिंसिपल स्टांस रहा है कि दोनों को साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आज इसके ऊपर जो है वो अपोजिशन ने जाहिर है बड़ी पॉलिटिक्स की और बड़ा इनको बुरा भला कहा कांग्रेस को कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर एक विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो ट्रेनें जो हैं उनका आपस में टकराव हुआ। विशाखापट्टनम और रेगादा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन जो थी उसने हिट किया विशाखापट्टनम पालसा जो पैसेंजर ट्रेन थी उसके साथ, उसके अंदर बहुत सारी बोगियां जो थी वो डीरेल हो गई थी जिसकी के वजह से 18 ट्रेन कैंसिल हुई, 11 पार्शली कैंसिल और 22 को डायवर्ट किया गया था। रेलवे मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने कहा है अपने एक्स के ऊपर कि काम इसके ऊपर जारी है और बहुत जल्दी सर्विसेज जो हैं वो फिर से जारी कर दी जाएंगी, इलाके सारे को साफ किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो मरने वालों की तादाद है वो ऊपर जा सकती है। मरने वाले जो हैं उनको 10 लाख रुपये, जो ग्रीवियसली इंजर हुए हैं उनको 2.5 लाख और जो माइनर जिनको इंजरीज आई हैं उनको 50,000 गवर्नमेंट जो है वो देगी। इंडिया टुडे की आज एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल जो है उन्होंने रैपर बादशाह को बुलाया है फॉर ऑनलाइन बेटिंग ऐप फेयर प्ले और वो उनका ईडी जो है उसका कहना है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज शामिल हो सकते हैं। बादशाह को उससे पहले इन्होंने संजय दत्त, रणवीर कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा और श्रद्धा कपूर को भी बुलाया था और उन्होंने कहा था कि हो सकता है इन लोगों ने इलीगल बेटिंग की हो फॉर आईपीएल मैचेस और इलीगली इनको प्रमोट किया हो देखने के लिए इस ऐप के ऊपर। इसके ऊपर ईडी ने वैसे क्लैरिफाई करते हुए कहा कि हम इन सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे लेकिन रणवीर कपूर को अभी तक तो उसको एज एन एक्यूज हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसको इसलिए हम बुलाना चाहते हैं कि हो सकता है उसकी इस सारे स्कैम के बारे में कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और वो जानता हो कि उसके जो ये सारे दोस्त यार हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको बुलाना चाहते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं। तो आज बादशाह साहब जो हैं वो आज इनके साइबर सेल में महाराष्ट्र पुलिस के जाते हुए नजर आए। कंगना रनावत साहबा जो हैं उनकी जो तेजस आई थी वीकेंड के ऊपर वो बेतहाशा बुरे तरीके से फेल हो गई है। 3 दिन के अंदर सिर्फ इस मूवी ने 3.8 करोड़ कमाए हैं और इसके बारे में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं उनका यह कहना है कि लोग जो कि देखते हैं फिल्में जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन, उनको पता ही होता है कि ये फिल्में किस तरह की होती हैं, उनको कुछ भी इसके अंदर एक्साइटिंग नहीं नजर आया, इंतहाई वीक कैरेक्टर्स और वीक जो है वो स्क्रिप्ट था तो इसलिए जो है उनको पसंद नहीं किया गया। इसके अलावा लोगों ने और भी बेतहाशा एतराज किया क्योंकि कंगना रनावत साहिबा ने मुलाकातें की वीकेंड के ऊपर इसराइल के एम्बेसडर के साथ और उन्होंने कहा जी कि हम बड़ा कंडेम करते हैं जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया है, तो जाहिर है कि जनता इनके ऊपर जो है वो बड़ी भड़की। पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं शाहिद अफरीदी और वकार यूनुस साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया गया है कि जो एक टीवी एंकर के प्रोग्राम के अंदर जो बाबर आजम की प्राइवेट चैट थी एक सीनियर पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ उसको पूरे के पूरे को लीक कर दिया, जिसमें कि वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने ज़का अशरफ साहब को फोन किया है क्योंकि पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो इन्होंने आगे से वो जवाब दे रहे हैं बाबर आजम के नहीं मैंने कोई फोन नहीं किया, तो वो आगे से कहता है कि क्या आप उनके फोन कॉल्स को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब मैंने कॉल ही नहीं किया ना उन्होंने मुझे किया तो इग्नोर कैसे करेंगे। ये सारे का सारा जब टीवी के ऊपर आया तो इसको कहा गया जी कि ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को इस तरह से बगैर पूछे हुए एयर कर देना अनएथिकल है और वायलेट करती है प्रोफेशनल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ जर्नलिस्ट। वकार यूनुस ने अपने एक्स के ऊपर लिखा कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली पथेटिक, बाबर आजम को छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक एसेट है, उसको बदनाम करने की कोशिश मत करो। शायद अफरीदी ने भी कहा कि इस तरह से जो आप हरकतें कर रहे हैं अपने ना सिर्फ मुल्क को डिफेम कर रहे हैं बल्कि अपने प्लेयर्स को भी डिफेम कर रहे हैं, क्या चेयरमैन ने खुद उस जर्नलिस्ट को बताया था यह सब कुछ एयर करने के लिए, और अगर उसने ऐसा किया है तो डिसग्रेसफुल एक्ट है, अगर नहीं किया तो आप लोगों की गलती है। वो जो प्रोग्राम था उसके अंदर अजहर अली भी बैठे हुए थे एज अ पैनलिस्ट, तो अजहर अली ने भी ये सवाल पूछा उससे जो है एंकर जो हैं वहां पे बड़े आजकल बड़े सेलिब्रिटी वो बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आपने क्या बाबर से पूछा है, अजहर अली ने कहा, या आपने चेयरमैन से पूछा है? तो पहले तो वो जो एंकर साहब हैं उन्होंने बड़ी आए बाएं शाएं मारी, नहीं नहीं अगर मेरे पास कोई चीज आएगी तो मेरा जॉब है ये सामने लेकर आना, जिसपे अजहर अली ने कहा कि ये अगेंस्ट एथिक्स है कि आप लोगों की प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशन है वो ऐसे एयर करें। तो उसके ऊपर फिर जी एंकर साहब ने बड़ी माफी मांगी, उन्होंने कहा हाँ ये गलत रसी, तो फायदा क्या हुआ आपने सब कुछ
कर दिया?
हाँ कर दिया कर दिया। यानी जर्नलिस्ट जो है, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूं एंड फॉर द लास्ट आई मीन डोंकीज इयर्स आई मीन जर्नलिज्म अक्रॉस द ग्लोब में जर्नलिज्म करके आई हूं, कभी आप अनवेरीफाइड चीज ऐसे नहीं कर सकते। कभी मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके अब एडिटर्स कौन बैठे हुए, हमारे तो एडिटर्स इतने सख्त होते थे माजिद भाई, 10 दफा चीज को वेट करते थे और फिर जाने देते थे। पूरा एक जो है वो ग्रुप बैठा होता है जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट में होता है, सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या सच है। मेरी अपनी कितनी स्टोरीज जो होती थी इंटीरियर मिनिस्ट्री की, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की,
जो आपको मिला आजकल तो व्हाट्सएप हाँ। व्हाट्सएप पर जो चीजें हैं सब
जी जी वो छापते नहीं थे, एडिटर्स जो थे छापते नहीं थे, वो कहते थे नहीं नहीं हम खुद फोन करेंगे, हम पूछेंगे इंटीरियर मिनिस्टर को या जो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है कि क्या ये चीजें सब सही है, तो शाजी अभी भी फिर आपकी ये खबर छापी जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे अनएथिकली सारा कुछ ऐसे जाने देते हैं, फिर बाद आके सॉरी, बस ये एक जो थैंक यू और सॉरी दो वर्ड्स देके चला गया गोरा इनको, बस उसके ऊपर ये भी अब जो अपनी जिंदगी चला रहे हैं। अच्छा जनाब, इंजमामुल हक साहब ने जो हैं उनके ऊपर जो एलिगेशंस आए थे कि एक फॉरेन कंपनी है जो कि इन सारे प्लेयर्स को चला रही है और उसके अंदर इनके बड़े फायदे हैं और उसकी वजह से जो है ये अपने मनपसंद जो है खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, उसके रहते हुए इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया है। पीसीबी की 5 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है अब वो सारे ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एलिगेशंस हैं इनको प्रोब कर रही है और एक रिपोर्ट सबमिट करेगी जका अशरफ साहब को, और इसमें जब ये एलिगेशंस अब लगाए गए हैं और ये जो एक फैक्ट फाइंडिंग अब प्रोब चलाई गई है, तो उसके ऊपर इंजमामुल हक साहब ने कहा कि मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं ये यहां पे सिलेक्शन कमेटी में बना बैठा रहा हूं, लेकिन उनको बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा लोग जो है विदाउट इन्वेस्टिगेशन कोई ना कोई बातें करते रहते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता कि हकीकत क्या है, और इससे पहले भी मैंने इस पोजीशन में काम किया था बिटवीन अगस्त 2016 से जुलाई 2019 में, तो मैं जो है भरा लागे नहीं चल सकता, लेकिन अगर पीसीबी ने मुझे बुलाया फॉर एनी प्रोब तो आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। और जनाब फीफा जो है उन्होंने बैन किया है फॉर्मर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के जो चीफ हैं लुई रेवेलेज, आपको पता ही है फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने किस कर लिया था जब ये जीते थे स्पेन की जो विमेन्स वर्ल्ड कप टीम है जो फाइनल में जीती थी अगस्त 20, 2013 को 1-0 से इन्होंने इंग्लैंड को हराया था सिडनी के में, और इसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत सारे ऑब्सीन किस्म के जेस्टर्स किए थे खुशी के अंदर, जबकि क्वीन लेटिजिया ऑफ स्पेन और उनकी जो बेटी जो है प्रिंसेस सोफिया 16 ईयर्स की वो भी उसी वो जो एक्सक्लूसिव डब्बा होता है वहां पे थी। तो बहरहाल जी अब इन्होंने सॉरी तो किया था लेकिन इनको निकाल दिया गया था और अब इनको जो है बैन भी किया गया है। और जनाब इससे पहले कि हम आपको आखिरी खबर सुनाएं, आज अफगानिस्तान ने 7 विकेट से वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका को हराया एट एमसीए स्टेडियम इन पुणे। 242 रन्स जो है
जो टारगेट दिया था वो बहुत छोटा सा था
जी, 242 का टारगेट था जो कि इन्होंने 3 विकेट्स के गवाने पे इन 45.2 ओवर्स पूरा कर लिया। दिलशान मुंडा शंका जो थे उन्होंने आउट किया था रहमतुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जदरान को, लेकिन उसके बाद फिर कैप्टन जो है अफगानिस्तान के हशमतुल्ला शहीदी, उन्होंने 58 नॉट आउट बनाए ऑफ 74 बॉल्स। अजमतुल्ला ओमर जई ने 73 नॉट आउट ऑफ 63 बॉल्स, रहमतुल्ला शाह ने 62 ऑफ 74 बॉल्स बनाए, और कैप्टन हशमतुल्ला ने टॉस जीतने के बाद जो था पहले बॉलिंग करने को चूज किया था। एंड जनाब लास्ट न्यूज हमारी एब्सोल्युटली थोड़ी सी सैड भी है लेकिन बड़ी प्यारी भी है, लेकिन बस वही है जिसको अल्लाह रखे कौन चखे। आपको पता ही है कि पैलेस्टीनियन फुटबॉलर्स जो हैं बेशुमार जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं, वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक जो फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक प्लेयर है हाजम अल रिकावी, जब ये ली गई थी तस्वीर उस वक्त ये 19 इयर्स का था, शबाब रफा के लिए ये फुटबॉल खेलता होता था, और कहते हैं जी कि एक दफा ये सारे प्लेयर जो हैं दिसंबर 2008 में जा रहे थे अपनी एक बस के अंदर जब इसराइल ने इनके ऊपर अटैक किया था, और सारे के सारे लड़के जो थे फुटबॉलर्स सॉकर प्लेयर्स ये पैलेस्टीनियन जो थे ये मर गए थे, और इन सारी बॉडीज को अल शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, वहां पे उसके मॉर्ग में रखा गया था। जब इसकी मां अल रिकावी की, जैसे कि बाकी लड़कों की मां आ रही थी, अल रिकावी की आई तो उसको अपने बेटे का हाथ हिलता हुआ नजर आया, जब उसने देखा तो उसको नजर आया कि वो बेटा है तो बहुत बुरे तरीके से जख्मी लेकिन वो जिंदा था। वो कहते हैं जी ये पहली जिंदगी मिली थी इस अल रिकावी को। उसके बाद एक दफा फिर से ये जो है चला गया 2011 में वेस्ट बैंक में खेलने के लिए डिफरेंट क्लब्स के लिए. वहां पे इसका भाई भी था और ये क्लब था इस दफा शबाब अल रफा, और वहां पे अपने भाई मोहम्मद के साथ खेलने के लिए ये गया था और अगेन यहां पे इजरायली बम्बार्डमेंट हुई और सारे का सारा इनका घर जो है वो तबाह हो गया, सब लोग मर गए. लेकिन जब वहां पे उन्होंने लोगों ने रबल हटानी शुरू की तो रबल के बीच में से फिर से ये लड़का जो है जिंदा निकला और इसने पहनी हुई थी वही जो है शबाब रफा की जो शॉर्ट्स हैं ये रेड कलर की वो पहनी थी. तो कहते हैं कि फुटबॉल का तो पैलेस्टीनियंस को भी बड़ा शौक है लेकिन सारे के सारे तकरीबन इनके जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो मर चुके हैं. लेकिन बहरहाल ये जो है इसको दूसरी दफा जिंदगी मिली है, हालांकि दो दफा इसराइली बॉम्बिंग हुई हैं एंड गॉड
से अल्लाह रखे से कौन चुके
उसे कौन चुके. यस एब्सोल्युटली.
दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय, कहां जाना है आपने, 2935 ड्रू रोड मिसिसागा, www.chalnivictoria.ca पे जाके देख लीजिए आप. 1200 से 1400 लोगों के बैठने की जगह है यहां पर एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल. 6479653823 इनका फोन नंबर है. ग्रिल एंड चिक दो लोकेशन से सर्व करते हैं आपको, 3525 प्लैटिनम ड्राइव मिसिसागा में और 50 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट ब्रैम्पटन में. www.grillandchick.com पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन. 9054560500 इनका फोन नंबर है. लास्ट बट नॉट लीस्ट डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा, डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा फैमिली कॉस्मेटिक ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम. कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर मॉर्निंग इवनिंग एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन. डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती हैं. अगेन दो लोकेशन सर्व करती हैं आपको. 9058721100 डॉक्टर नाजिया रहमान का फोन नंबर है.
कुछ हाँ जी, बस हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपने जाना नहीं है, हमारे साथ कुछ स्पॉन्सर देने लगे हैं लेकिन उसके बाद हमारा जो क्रिकेट का स्पेशल सेगमेंट है वो शुरू होने वाला है. आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं हर्ष ठाकुर, सीनियर प्लेयर हैं तो बड़े छोटे से बच्चे से हैं अभी, लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत अर्ली खेलना शुरू किया था तो नाउ ही इज प्रीटी सीनियर इन द कनेडियन क्रिकेट टीम. तो आज उनसे हम बात करेंगे ये जो सारे वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड.
डॉक्टर मजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे. बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देकर डिस्काउंट हासिल कीजिएगा. डॉक्टर मजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661.
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
हेलो जी, वेलकम बैक. हमारे साथ हैं हर्ष ठाकुर और उनसे हम बात करेंगे न सिर्फ आज के मैच के बारे में बल्कि और जो प्रिडिक्शंस वो हमें अगर कोई देना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनसे जुड़ेंगे. तो हर्ष, हेलो, हाउ आर यू एंड वेलकम टू द शो. हर्ष, आपको आवाज आ रही है हमारी?
हाँ, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी?
या वी आई कैन हियर यू नाउ. ओके, तो आप तो बड़े आज लग रहे हो प्रिम एंड प्रॉपर एंड यू आर वेयरिंग माजिद भाई फेवरेट कलर, सो व्हाट्स अप?
नो, जस्ट योर हेयर कट टुडे. हमें कल मेयर के साथ मीटिंग है नेशनल टीम की, सो
यस, दैट्स राइट. आई नो बिल्कुल बिल्कुल. आप लोग जो है ब्रैम्पटन के मेयर से कल मिल रहे हैं, आपकी पूरी टीम वहां पे होने वाली है एंड आवर टीम इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर टू कवर दैट इवेंट. तो आपका क्या है वो कल का इवेंट, क्या है आपका मेयर के साथ, क्या आपकी बात होने वाली है वहां पे?
नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट बेसिकली अ मीट एंड ग्रीट. मेयर इज जस्ट ही इज हैप्पी कि कैनेडियन टीम अच्छा कर रही है और हम वर्ल्ड कप जा रहे हैं. सो और ब्रैम्पटन का मेयर Patrick Brownlee is very supportive of cricket, pehle se. So he just wants to meet the team and we'll share some issues that we have and talk about certain things with him.
Okay. Harsh, ye to World Cup aap dekh rahe hoenge. Ye to jo fireworks ho rahe hai na, ye to kar rahi hai Afghanistan ki team. To aapko kabhi tournament shuru hone se pehle lag raha tha ki ye itni strong hai aur ye aise bash karegi badi badi teams ko like England and aaj to Sri Lanka ko bhi haraya. तो पाकिस्तान को हराया. व्हाट डू यू से अबाउट दैट?
नो, अफगानिस्तान पहले से मुझे लग रहा था वेरी स्ट्रांग टीम. उनके साथ जो प्लेयर्स है वो सब बड़ी लीग्स खेल रहे हैं. आई थिंक 5-6 प्लेयर्स उनके जो टीम के हैं वो सारी लीग्स खेल रहे हैं दुनिया में और सो जो एक्सपोजर उनके साथ वो पहले से हाई था. लेकिन जो अब चेंज देखने मिल रहा है अफगानिस्तान में वो है उनकी बैटिंग is very different than what it used to be. Aap dekho, ab unke top four batters are very technically solid. So, wo pehle nahi tha, pehle aisa tha ki aap wo sirf block karenge ya chakka marenge. Lekin if you see them now, they're very, the way they approach a chase, wo sab ek method hai jo jaise batting karte hai. Aise nahi ki sab aaye, mara aur out ho gaye. Lekin aap, unke top three batsmen are all very technically solid batsmen.
तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे इसमें जो स्ट्रांग है वो कौन से हैं, आपके अपने पर्सनल फेवरेट कौन से हैं? आपको लग रहा है कि ये बहुत इंप्रूव किया है इन लोगों ने गेम बहुत, ये जो ये दो बैट्समैन या ये वन बैट्समैन या कि ये वाला बॉलर जो है इसने अपना टेक्निक बहुत एनहांस किया है, वो कौन से कुछ प्लेयर्स हैं जिनका आप नेम करना चाहते हैं?
Well, obviously Gurbaz. I think Gurbaz is a heck of a talent. मैंने उससे अभी नहीं देखा, मैंने वो दो तीन साल पहले देखा था T20 leagues में. I've been a big fan of Gurbaz. जैसे वो batting करता है. Ibrahim Zadran, very good young player. I would say those two batsmen are probably my favorite batsmen in that team.
And the bowler?
Bowler obviously Rashid Khan. Top class, Mujib, obviously, Mohammad Nabi, even the Fazal Farooqi, the left-arm seamer, wo GT20 mein bhi waise aaya tha. They're all very, very good, solid top bowlers.
आप जो ये अफगानिस्तान की इस वक्त टीम है, जब ये G20 में आए थे ये लड़के, तो इनमें से आप किसी के साथ खेले थे पर्सनली? आपका कुछ रैपो रहा इनके साथ?
नहीं, हमारी टीम में नवीन उलक खेलने वाला था, लेकिन नवीन उलक इंजर्ड हो गया था. Fazal Farooqi was वो किसी और टीम के लिए खेल रहा था, लेकिन मेरी इंटरेक्शन किसी से नहीं हुई ऐसे पर्सनली.
ओके, अच्छा ये अब आप मुझे बताएं कि अब थोड़े से मैचेस रह गए हैं हर्ष, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया तो वैसे फाइनल्स में जा रहा है, उसके साथ और कौन सी दो टीम्स जो हैं जा सकती हैं और उनका टेक्निकल प्रोएस क्या है? तो टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करेंगे और देखेंगे कौन सी आपको लग रहा है तीन टीम्स अब आगे जाएंगी.
Well, I guess India, फिर New Zealand, फिर भी एक्चुअली बोलो तो न्यूजीलैंड का स्केड्यूल अब बहुत मुश्किल है. एक्चुअली वो खेलेंगे पाकिस्तान के सामने एक मैच बाकी है, फिर साउथ अफ्रीका के सामने एक मैच बाकी है और श्रीलंका के सामने. न्यूजीलैंड का स्केड्यूल एक्चुअली बहुत मुश्किल है अब, बट आई थिंक वो जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया, दे आर बैक टू बींग देयर वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, एंड देन साउथ अफ्रीका लुक प्रीटी कंफर्टेबल नाउ.
तो क्या है इनके टेक्निकल पॉइंट्स, क्या है, क्या हाई पॉइंट्स हैं इन तीनों टीम्स के?
Well, obviously साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है. आप उनकी बैटिंग देखो तो स्पेशली व्हेन दे बैट फर्स्ट, जैसे बैटिंग करते हैं, फियरलेस बैटिंग करते हैं, सो इट्स कमेंडेबल जैसे बैटिंग करते. लेकिन ऑब्वियसली उनकी एक क्लियर वीकनेस है कि वो चेस में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और वो उनको देखना पड़ेगा क्योंकि हर गेम में आप पहली बैटिंग नहीं करोगे. सो ऑब्वियसली बैटिंग उनकी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी ठीक है. पेस बॉलर्स उनके काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि जब पहली बैटिंग कर लेते हैं तो इतना बड़ा स्कोर हो जाता है कि दूसरी टीम का प्रेशर बहुत होता है. सो अभी के लिए तो अच्छी है. न्यूजीलैंड ऑब्वियसली हमेशा न्यूजीलैंड ऑलराउंडर टीम होती है, उनके प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं. द वे दे प्लान फॉर टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमेशा वो परफॉर्म करते हैं, और उनकी बैटिंग और बॉलिंग लुक्स अ प्रीटी वेल राउंडेड टीम एट द रेट. इवन जो ऑस्ट्रेलिया के सामने हारे 385 या 388 ऑलमोस्ट उन्होंने चेस किए, सो इट्स कूडोस टू देम. और ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली एवरीबडी नोज अबाउट ऑस्ट्रेलिया, द थ्री फेस बॉलर्स दे हैव और एंड ऑब्वियसली दैट डेंजरस बैटिंग लाइनअप. सो आई थिंक ऑल टीम्स आर प्रीटी वेल राउंडेड. लेकिन अभी वही होगा कि दिन पे क्या होगा, लाइक सेमीफाइनल जब आएंगे तो देखना पड़ेगा कि उस दिन पे कौन सी टीम का अच्छा खेलती है.
अच्छा, एज अ क्रिकेटर आपको क्या लग रहा है कि इंडिया की जो टीम ने इतना अच्छा इस दफा परफॉर्म किया, उनका हाई पॉइंट क्या रहा इस दफा इस वर्ल्ड कप में?
आई थिंक इंडिया की बैटिंग हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है. आई थिंक इंडिया की बॉलिंग मे बी उनसे बैटिंग से ज्यादा अच्छी है अभी राइट नाउ, क्योंकि आप देखो तो इंडिया ऐसी बॉलिंग है जो उनके पास ऐसे बॉलर्स है जो हर कंडीशंस में अच्छा कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप पेस बॉलर्स पे रिलाई कर रहे हो, अगर पेस बॉलर कोई नहीं चला फिर भी कुलदीप आएगा, कुलदीप नहीं चला फिर जडेजा आएगा, और कोई नहीं चला तो फिर भी हार्दिक पांड्या व्हेन ही इज फिट वो भी खेलेगा. सो आई थिंक इंडियाज बॉलिंग एंड देयर फील्डिंग इज देयर स्ट्रांग पॉइंट राइट नाउ.
ओके ऑल राइट. तो अब ये जो है पाकिस्तान की टीम के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे बाबर आजम को जो स्किपर है उसको बहुत खींच रहे हैं. आपको क्या लगता है राइट इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप जब चीजें भी आर नॉट गोइंग योर वे और फिर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हार्श किस्म का कैप्टन को आ जाए तो अगर उसका खुद का मोराल हाई नहीं रहेगा तो वो टीम का क्या करेगा? एज अ प्लेयर आप क्या बोलते हो इसके बारे में?
ऑब्वियसली प्रेशर होगा. आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जब वर्ल्ड कप होता है तब प्रेशर होता ही होता है. आप अगर आप हारोगे मैच तो आपको, आई थिंक वसीम अकरम सर आल्सो सेड दिस रिसेंटली, उन्होंने बोला कि जब आप हारोगे तो क्रिटिसिज्म होगा, वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है, क्योंकि फैंस पैशनेट होते हैं क्रिकेट के लिए, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट फैंस बहुत पैशनेट होते हैं. तो अगर आप मैचेस हारोगे तो नेचुरली रिएक्शन आएगा ही आएगा. और ऑब्वियसली अगर आप एक चीज माइंड में रखो कि आप एट द एंड ऑफ डे फैंस की एक ही चीज है कि ये पांच गेम्स है या चार गेम्स है. ऐसा नहीं है कि ये बाबर आजम प्लेयर बुरा है या कोई भी प्लेयर बुरा है. ऐसा हो सकता है कि कोई बार आप कुछ भी करो चलता नहीं है. वैसे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सामने अच्छा खेला था, ऐसा नहीं है कि बुरा खेला था. एक एक बॉल की